यही जाना कि कुछ नहीं जाना हाय, यही जाना कि कुछ नहीं जाना हाय, वो भी एक उम्र में हुआ मालूम।
सालों पहले लंदन में बीबीसी से बात करते हुए मकबूल फिदा हुसैन ने ये शेर सुनाया था, और सही मायनों में यही उनकी जिंदगी का फलसफा भी था। एक पुरानी यहूदी कहावत है, ईश्वर का वास तफसीलों में रहता है। ईश्वर के बारे में ये सच हो या ना हो, हुसैन की कला का सच यही है। हुसैन की पूरी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो जो चीज तुरंत आंखों को पकड़ती है वो कोई भारी भरकम विराट सत्य नहीं, बल्कि छोटी नगण्य और निरीह चीजें हैं जिन्हें इतिहास ने तो किनारे छोड़ दिया है, लेकिन हुसैन एक स्कूली बच्चे की तरह उन्हें अपनी जेबों में भरकर लिए चले जाते हैं। एक बार रूसी लेखक व्लादिमीर नोबोकॉफ ने एक महान कलाकार के लक्षण बताते हुए कहा था कि वो उस आदमी की तरह है जो मकान की नवी मंजिल से गिरता हुआ अचानक दूसरी मंजिल की किसी दुकान का बोर्ड देखकर सोचता है, अरे इसके तो हिज्जे गलत लिखे हैं। ये थे मकबूल फिदा हुसैन। कामना प्रसाद मशहूर लेखिका हैं और बहुत बड़ी उर्दू परस्त हैं। उनको हुसैन को बहुत नजदीक से जानने का मौका मिला था। मैंने उनसे पूछा कि आपकी और हुसैन की पहली मुलाकात कहाँ पर हुई थी।
सड़क पे हमने उनको देखा कि वो एक काली सी गाड़ी जो उनकी पुरानी गाड़ी थी उसको भारती नगर के सामने उस सड़क पे, पीछे से तो पहचाना नहीं गया कि वो उसको धक्का दे रहे थे, शायद वो स्टार्ट नहीं हो रही थी या जो भी, और अकेले थे। हम गाड़ी में थे तो हमने यूं ही गाड़ी रोक दी, मैंने सोचा शायद कोई किसी को जरूरत हो, तो वो फौरन आके बैठ गए। फिर अचानक मैंने कहा कि ओ माई गॉड यू आर MF हुसैन, तो बोले जी। फिर दूसरी दफा एयरपोर्ट पे और उसके बाद फिर दोस्ती हो गई, क्योंकि उनको ये लगा कि हाँ शायद मेरा उर्दू शेर व शायरी से कुछ ताल्लुक है, या हम उर्दू शेर व शायरी या अपनी तहजीब के परस्तार हैं। और उनको भी बहुत शौक था, मौजू शेर पढ़ते थे और पुराने उस्ताद उनको बहुत याद थे।
हुसैन अपने जमाने के शायद सबसे महंगे पेंटर थे, लेकिन उनकी दरिया दिली के किस्से भी कम नहीं है। सुनीता कुमार एक मशहूर चित्रकार हैं और एक समय में मदर टेरेसा की प्रवक्ता रह चुकी हैं। उनके पति नरेश कुमार भारतीय डेविस कप टीम के कप्तान रह चुके हैं। एक बार उन्होंने हुसैन को राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता देखने के लिए दिल्ली आमंत्रित किया।
हम दिल्ली गए हुए थे और एक पार्टी पे हम थे और वो आ गए। मैं तो हमेशा उनकी फैन थी, और जब अंदर आए तो वो तो टॉल और लंबे और बेफीट और उनके बाल जैसे उड़े हुए, बहुत स्ट्राइकिंग फिगर थी उनकी। उस टाइम दिल्ली हम गए हुए थे वो टेनिस चैंपियनशिप के लिए नेशनल्स। वो बोले मुझे कि मैं टेनिस का बहुत शौकीन हूँ। मैंने उनको इनवाइट कर लिया वो अगले दिन के लिए, क्योंकि वो फाइनल था। वो फाइनल में उन्होंने बोला ये जीतेगा, मैंने बोला ये जीतेगा। वो मैच था विजय अमृतराज और मैल एंडरसन। एनीवे मैं जीत गई, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप जीते तो मैं आपको अपनी एक पेंटिंग दूंगा, और अगर मैं जीता तो फिर आप मुझे अपनी पेंटिंग दीजिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत जेनरस ऑफर थी, मुझे मालूम था कि विजय जीतेंगे।
और फिर वो पेंटिंग आपको मिली या नहीं मिली?
हाँ, मैं तो घबराहट से उनको पूछा भी नहीं कि बेट का क्या होगा। हम ओबेरॉय ठहरे हुए थे दिल्ली में, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं नीचे आई तो रिसेप्शनिस्ट बोलता है आपके लिए हुसैन साहब कुछ छोड़ के गए हैं। तो मैंने सोचा होगा चिट्ठी लिखी होगी थैंक यू कि आपने मुझे इन्वाइट किया। वो तो पेंटिंग निकली, बहुत बढ़िया पेंटिंग, ऑयल की उनकी घोड़े की। वो अभी थोड़ी गीली गीली भी थी क्योंकि वो ऑयल में किया, तो ऑयल तो इतनी जल्दी सूखता नहीं है ना।
प्रयाग शुक्ल जाने माने कला समीक्षक हैं जिन्हें हुसैन को नजदीक से जानने का अवसर मिला था। वो बताते हैं कि जब 80 के दशक में भोपाल में भारत भवन बना तो ये तय किया गया कि उसमें हुसैन की पेंटिंग्स भी लगाई जाए।
हुसैन साहब इसके लिए राजी हो गए स्वामीनाथन के कहने पर कि मैं कुछ पेंटिंग्स दे दूंगा, ऑन लोन, आप लगा लो फिर लौटा देना। तो मैं हुसैन साहब के यहाँ 3-4 बार गया, वो मिलते नहीं थे, वो तो कहाँ इधर टिकने वाले आदमी नहीं थे। इतने मैंने शमशाद से कहा, उनके जो बेटे जंगपुरा में, तब इन लोगों का फ्लैट था, कभी कभी हुसैन साहब वहाँ आते थे, कि भाई तुम मुझे फ़ोन करना जिस दिन रात को तुम्हारे लगे कि आज हुसैन साहब यहाँ रहेंगे। शमशाद ने एक दिन फ़ोन किया कोई 10 से 11 बजे कि आज वो रहेंगे यहाँ, ऐसा कह रहे हैं। तो मैं सुबह 6 बजे पहुँच गया, हुसैन साहब बाहर बैठे हुए चाय पी रहे थे, ये अभी तक अच्छी तरह याद है। तो उन्होंने बाकी तो फिर क्या दिक्कत है, ले जाइए। मैंने तो शमशाद को कह रखा है कि वो आप आएंगे और ले जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन कैसे ले जाऊँ आप, मैं तो आपके रहने पर ही ले जाना ठीक रहेगा, ऐसा हम लोगों ने सोचा, फिर आपको कुछ लिख कर भी तो दूंगा। तो हंसे बोले नहीं, तुम ले जा रहे हो तो फिर क्या लिख कर देना, और स्वामी के पास पहुँचेंगी। ये ज़रूर पूछा उन्होंने कि कहाँ रखोगे, तो बोले कि कैसे ले जाएंगे। मैंने कहा अभी मौका नहीं छोड़ना। तो वो हीरो सिनेमा के पास कोई टेम्पो खड़े मैंने देखे थे 2-4 बार। मैंने कहा मैं अभी आता हूँ। एक टेम्पो वाले को लाया, उसमें उनकी पेंटिंग रखी, कागज़ का एक टुकड़ा नहीं जिसमें उनको लिख कर दिया हो कि मैं ले जा रहा हूँ।
हुसैन ने 1963 के बाद से जूते पहनना छोड़ दिया था। इसके पीछे भी एक कहानी है जिसे हुसैन ने BBC से बात करते हुए एक बार साझा किया था।
वो एक वाकया हुआ था, मुक्ति बोध जो बड़े अच्छे वहाँ मध्य प्रदेश के, उनकी पोइट्री बहुत, उसके ऊपर कई पेंटिंग भी की है उनका। व्हेन ही डाइड, तो उस मई का महीना था, तो वो जो उसके बॉडी को लेके जा रहे थे, तो मैं वहाँ तक गया था शमशान तक चलता, तो मैं उसी वक्त मैंने चप्पल वो सब पहने में तो उतार दिया मैंने, और मैंने कहा मुझे भी उसकी जलन जमीन उसका महसूस करना। फिर एक और ख्याल था, वो करबला का था, कि करबला में कैसे रीत के ऊपर कैसी क्या हुई उपकर। फिर दूसरी एक और भी है कि मेरी माँ, उन्होंने कभी तस्वीर नहीं उतरवाई, और उनका उनका ध्यान कोई जब मैं डेढ़ साल का था तब हो गया था। तो मेरे पिताजी कहते थे कि मेरे पैर हैं जो मेरी माँ के जैसे दिखते हैं, तो फिर मैंने कहा उस पैर में जूते क्यों पहने।
हुसैन स्वभाव के फक्कर थे, उनको सनकी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके स्वभाव में एक किस्म की आवारगी जरूर थी।
एक्सेंट्रिक नहीं थे, मैवरिक थे, तबीयत में एक बला की आवारगी थी। यानी अगर दिल्ली जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पे कलकत्ते की टिकट लेके कलकत्ता पहुंच जाते थे, अगर बॉम्बे से निकल रहे हैं तो इस तरह की एक वो आवारगी उनकी तबीयत में हमेशा थी, और एक चाइल्ड लाइक कौतूहल जिसको कहते हैं हिंदी में, हर कुछ जानने की या समझने की, और रेलेवेंट थे इसलिए वो यूथ ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा।
सुनीता कुमार बताती हैं कि कितनी बार हुआ है कि वो कोलकाता में उनके घर से हवाई अड्डे जाने के लिए निकले हों और हवाई अड्डे से वापस घर आ गए हों।
वो तो एयरपोर्ट जाते थे गाड़ी लेके, और वो ड्राइवर से तो उनका बहुत अटैचमेंट थी, वो लेके जाते थे और रास्ता में बोलते थे मेरा दिल नहीं कर रहा, तो फिर आ जाते थे। जो घर का नौकर था ना, वो उनका कमरा सफा कर देता था कि चले गए हैं, और ये वो खिड़की से देखता था कि ओहो ये तो वापस आ गए, तो वो हमको आके बोलता था कि ये किस किस्म के साहब हैं जो जाते जाते फिर वापस आ जाते हैं। एक दिन तो उन्होंने रास्ते में ड्राइवर को बोला कि आप रुकिए, अभी मैं इधर ही आराम कर लेता हूँ। तो ड्राइवर सोचा कि कहाँ आराम करेंगे, तो बिल्कुल पेड़ हैं और फील्ड्स हैं एयरपोर्ट जाने के टाइम में। तो वो गाड़ी से उतर के और वो जमीन पे अपना बैग रख के तो सो गए। तो ड्राइवर हमको फोन करता है कि मैन साहब देखिए, एक जगह मर्सिडीज खड़ी है और दूसरी जगह ये जमीन पे लेटे हुए हैं।
इसी तरह का एक वाकया एसके मिश्रा के साथ हुआ था। मिश्रा प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के प्रधान सचिव रह चुके हैं। उस जमाने में वो इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक हुआ करते थे। उन्होंने साइप्रस में हुसैन के चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें वहां के राष्ट्रपति को भी आमंत्रित किया गया था।
साइप्रस में उस वक्त मैं ITDC में था, तो हम एक होटल सेटअप कर रहे थे लिमसॉल में। तो मैंने सोचा कि इसको पब्लिसिटी के लिए मदर टेरेसा के एग्जीबिशन लगाएंगे कुर्सिया में। तो मैंने हुसैन से कहा कि अपने पेंटिंग्स वहाँ ले चलो। कहें ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस के प्रियानो से मेला इनाग्रेट करने के लिए वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ी पब्लिसिटी दी हुसैन को। अब जब एग्जीबिशन का डेट था उसके एक दिन पहले में कहीं हुसैन का नज़र ही नहीं आ रहा, हमने कहा क्या हो गया उनको। फिर शाम को लास्ट फ्लाइट पे आ रहे हैं बड़ा, तो हमने हुसैन पेंटिंग्स कहाँ, कहने अगले फ्लाइट से आ रहे हैं, हमने अगला कोई फ्लाइट ही नहीं है। मैं बहुत नाराज़, कहने लगे चलो अच्छा खाना खाने चलते हैं। हमने कहा तुम खा लो जाके खाना, मैंने खा था एंड आई वॉज वेरी एंग्री। हमने कहा तुम नहीं आते तो मैं कह देता हुसैन को हार्ट अटैक हो गया, नहीं आ पाए। अब मैं क्या जवाब दूँ, प्रेसिडेंट को सबको बुला रहे हैं, उनके शक्ल पर कोई असर ही नहीं। खैर सुबह उठे वो मेरे कमरे में आए, कहने चलो ब्रेकफास्ट करने चल जाओ। खैर हमने कहा चलो, कहने वो एग्जीबिशन कहाँ होना था, हमने कहा ये एकेडमिक क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो उससे क्या हुआ, कहने नहीं मैं किस हॉल में होना था। खैर वो हॉल लेके देखा सारे कोई 13 कैनवासेस लटके हुए और पेंट ड्रिप कर रहा था कईयों में। रात भर उन्होंने पूरा एग्जीबिशन नए सिरे से वो किया।
हज़रत निज़ामुद्दीन में ज़की मियाँ का चाय का एक ढाबा हुआ करता था, अब है या नहीं पता नहीं। ज़की मियाँ हर सुबह दूध से तरोताज़ा मलाई की प्लेट बचाकर अलग से रख देते, क्या पता किस वक्त मलाई के शौकीन हुसैन पहुंच जाएं। खाने पीने के अनोखे अड्डे और जगहें उन्हें बचपन से ही आकर्षित करते थे। उनका एक और शौक हुआ करता था मिट्टी के कुल्हड़ में कढ़ाई के औंटते दूध की धार से निकलती सोंधी खुशबू का आनंद लेना।
वो छठ में हमारे यहाँ, हम बिहार से हैं, हमारे यहाँ वो बनते हैं ठेकुआ, वो आटे से घी से गुड़ से, और वो बहुत पसंद था उनको, तो वो उसकी हमेशा फरमाइश करते थे और वो नाम तो भूल जाते थे, तो वो कहते थे वो जो बिहारी डोनट है ना वो लेते आना। फितरत में उनके बहुत सहजता, बैठेंगे तो कहेंगे कि अच्छा जरा चाय बनवाओ, तो चाय बनेगी तो साथ में कहेंगे जरा घर फोन करना, कोई रात की रोटी रखी है, तो वो बस वो रात की रोटी और चाय डुबो के, और काफी था उनके लिए वही।
माधुरी दीक्षित को उन्होंने एक बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार क्या दिया, वो उनके न सिर्फ मुरीद हो गए बल्कि उनके प्रति उनके जहन में एक तरह का जुनून सवार हो गया।
उन्होंने हम आपके हैं कौन, माधुरी दीक्षित, उन्होंने उनके इमेजिनेशन को इतना कैप्चर किया हुआ था उन दिनों कि कोई 20-25 दफा, 2-4 दफा तो हमें भी दिखला दी, तो हमने कहा कि अभी इससे ज्यादा हम आपका यकीन नहीं भा पाएंगे। ठीक है, आई लाइक द फिल्म। तो इस तरह वो जब एक चीज में लग जाते थे और उनको इस कदर आ गई, हमने वो शेर भी सुनाया कि सीखते हैं गुल रुखों के लिए हम सफर, कुछ तो गहरे मुलाकात चाहिए।
दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना।
माधुरी दीक्षित को लेकर हुसैन ने सन 2000 में फिल्म भी बनाई गज का।
मैं और मेरी पत्नी बंबई गए हुए थे और शमशाद ने बताया कि इन दिनों हुसैन साहब शूटिंग कर रहे हैं। हम वहाँ पहुँचे मैं और मेरी पत्नी, तो हुसैन साहब कुछ कई लोग साथ बैठे हुए, एक बड़ी मेज थी उसमें कुछ शाम का जैसे नाश्ता आता है ये सब के लिए जो शूटिंग के से जुड़े हुए लोग हैं। इक्वालिटी का ऐसा सेंस तो मैंने किसी दूसरे समुदाय में नहीं देखा कि अगर वो आपको पहचानते हैं, आप मजदूर हो, आप पानी पिलाने वाले हो, आप राजनेता हो, अगर एक साथ किसी संयोग से वो लोग इकट्ठा हैं तो ध्यान सबकी तरफ। उस दिन भी मैंने यही देखा कि जो वो खा रहे हैं वो ड्राइवर भी खाएगा, उनके साथ काम करने वाले लोग भी खाएंगे। बहरहाल हम लोगों उस शाम की याद ये है, को दिखाया घुमाया उन्होंने थोड़ा सा, और तैयब ने सेट बनाया था गजगामनी का, वो शाहरुख खान बगल में खड़े थे और मैंने पहचाना नहीं कि ये शाहरुख खान, क्योंकि वो लगा कि ये भी जैसे मैं देख रहा हूँ ये भी कोई व्यक्ति देख रहा है। हाँ फिर एक बात ये भी नहीं भूला उस शाम की, तो मुझसे बोले कि आजकल प्रयाग मेरी हालत यह है कि सुबह एक घोड़ा बनाता हूँ, उसको बेचता हूँ, फिर शाम की शूटिंग करता हूँ।
2005 में हिंदू कट्टरपंथियों ने उनकी एक पेंटिंग की नुमाइश में तोड़फोड़ की, उनकी धमकी की वजह से उन्होंने भारत छोड़ा, तो फिर अपनी मृत्यु तक वो वापस भारत नहीं लौटे। एक बार बीबीसी ने उनसे सवाल भी किया कि क्या सोचकर उन्होंने हिंदू देवियों को न्यूड में पेंट किया।
वो आप जाके एलोरा चले जाइए, महाबलीपुरी में चले जाइए, उसका जवाब वहाँ है। और उसका वो क्या था, वो बहुत बड़ा जो हिस्टोरिकल जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो कम से कम कोई 30-40 पेज का है, वो पढ़ लीजिए। उसमें अब उसके अंदर मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता। मैं आर्ट कर रहा था, मैं ये जानता नहीं था कि क्या है, सिर्फ आर्ट है और आर्ट यूनिवर्सल है। द इमेज जो नटराज जो बना हुआ है वो नटराज सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए। महाभारत जो लिखी गई है वो कुछ खाली एक पागल संत साधुओं के लिए नहीं है या उसके लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।